मैं कोशिश करूंगी कि इन आयतों को जहां तक एक टॉपिक है साथ लेके चलूं, फिर इंशाल्लाह इस पे थोड़ी सी हम वजाहत करेंगे। फरमाया वकअय्यिम मिन नबीयिन, और कितने ही बहुत सारे नबियों में से, कातल माह रिब्बियून कसीर, लड़ाई की उनके साथ अल्लाह के बहुत सारे बंदों ने या बहुत बड़ी जमातों ने। क्या खूबियाँ थी उनकी, गिनते जाइए, पॉइंट डालते जाएँ अभी से। फ़मा वहनू, ना उन्होंने हिम्मत हारी, लिमा असाबहुम फ़ी सबीलिल्लाह, उस पर जो उनको अल्लाह के रास्ते में तकलीफ़ पहुँची। दूसरी सिफत, वमा दाउफू, और न वो सुस्त पड़े। तीसरी चीज़, वमस्तकानू, और न वो दबे, डगमगाए नहीं, दबे नहीं। वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, और अल्लाह ताला सब्र करने वालों को पसंद करता है। चौथी सिफत क्या थी उन लोगों में, वमा कान कौलहुम इल्ला, और इसके सिवा उनकी और कोई बात ही नहीं थी। अन कालू, के उन्होंने कहा, रब्बना अग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफना फ़ी अमरीना, ए हमारे रब हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और उन ज़्यादतियों को जो हमने अपने कामों में कर लीं। व सब्बित अक़दामना, और हमारे कदम जमा दे। वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, और हमें काफिर कौम के मुकाबले में गलबा दे दो, इनके मुकाबले में हमें गालिब फरमा। अल्लाह ने क्या किया, फ़ाताहुमुल्लाहु सवाबद दुनिया व हुस्न सवाबिल आखिरा, बस अल्लाह ने इनको सवाब दुनिया का और खूब सवाब आखरत का दिया, क्योंकि वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला पसंद करता है, मोहब्बत रखता है नेक काम करने वालों से। तीन आयतें हैं लेकिन पूरा मनहज बयान कर दिया। हर दौर में नबियों के साथ जो गिरोह तैयार हुए, वो लोग जो नबियों के मिशन के हिस्सेदार बने, जिन्होंने उस काम को आगे लेके बढ़ाया, उनकी खूबियां हैं। अब ज़रा दोबारा देखिए, वकअय्यिन, ये लफ्ज़ जो कअय्यिन है ना, ये पहली दफ़ा आया आपके सामने, कम खबरिया के माने में, यानी ये खबर के लिए आता है। असल में ये लफ्ज़ अय्यिन था, इस पर काफ जो है ये तशबीह का दाखिल किया, जैसे हम कहते हैं ना कम असलिन, जैसे मिसाल, तशबीह देने का, और नून तनवीन को नून की शक्ल में लिख दिया। बस इसको ये समझ लें कि ये खबर है। वकअय्यिन मुराद के कई बार ऐसा हुआ, हमारे यहाँ कहानी सुनाते हुए कहते हैं ना, वो एक ज़माने की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है, या एक मौके पर ऐसा हुआ, वो एक बादशाह था। बिल्कुल यही ये लफ्ज़ है अरबी ज़ुबान में, अगर इसको आप मज़ीद खोलूँगी तो आप परेशान होंगे, इतना ही काफ़ी है। वकअय्यिम मिन नबी, इसको अपने बड़े ठेठ लहजे में बताऊँ तो कहोगे एक दफ़ा का जिक्र है, तो मिन नबीयिन, कई नबी गुजरे, इशारा है उन सारे नबियों की तरफ जो कि इंसानियत की हिदायत के लिए दुनिया में आते गए। क्या किया, कातला, लड़ाई की, एक लफ्ज़ होता है कतल, कातला, और यहाँ के काफ पे ज़बर है, कातला, जहाँ भी अलीफ आता है, पीछे ये बात हो चुकी है वैसे, किसी दूसरे के मुकाबले में लड़ाई करना, ठीक है, कतला क्या, उसने उससे लड़ाई की, लेकिन कातला क्या कि एक दूसरे के साथ मिल के लड़ाई करना, इशारा है उसी कॉज की तरफ जो अल्लाह के नबियों की होती थी, कि अल्लाह के नबी के मिशन के मददगार बन गए। किनों, कौन, माहू, उसके साथ, हु की ज़मीर नबी की तरफ है, कौन, रिब्बियून, रिब्बियों ने, लफ्ज़ रिब्बी बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल होता है, इसको अभी भी समझ लें, पीछे भी गुजर चुका है वैसे, लेकिन यहाँ देखिए कि ये जो रिब्बी लफ्ज़ है ना, ये रा की ज़ेर से भी पढ़ा जाता है रिब्बी, ये रा के ज़बर से भी पढ़ा जाता है रब्बी, और रा की पेश से भी पढ़ा जाता है रुब्बी, यानी ये एक लफ्ज़ है, और तीनों के मुख्तलिफ मानी है। रुब्बा का लफ्ज़ कुरान पाक में भी आता है, 14वें पारे की पहली आयत, रूबा मा यवद्दुल्लज़ीन कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, एक वक्त होने वाला है, फिर वहाँ बताऊँगी इंशाल्लाह इसकी डिटेल। अब यहाँ इसके सारे इस्तेमाल जमा कर लें तो आसान से लफ्ज़ों में इसके दो तीन मुख्तलिफ मानी बनते हैं। एक इसका मानी बनता है रब वाले, जब रा की ज़बर होती है तो ये रब्बानी लफ्ज़ की जमा बनती है, तो बना रब वाले, ठीक है, इसी तरह जब ये रिब्बी रा की ज़ेर के साथ आता है तो इससे मुराद होते हैं बहुत बड़ी जमात, गिरोह, गिरोह कसीर, जमात, अल जमातुल कसीरा, ठीक है, तो इसके दोनों मानी है कि जो लोग नबियों के साथ मिलके उस मिशन के हिस्सेदार बने, वो अल्लाह वाले भी थे। मुराद ये है कि अल्लाह ताला से उनके दिल जुड़े थे, इखलास की तरफ इशारा है कि उनकी सारी कोशिशें नबी के लिए नहीं होती थी बल्कि अल्लाह के लिए होती थी। और दूसरी बात है कि बहुत सारे लोग थे, पता क्या चला कि नबियों के साथ भी कभी कभी बहुत सारे लोग होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि थोड़े लोग हों, बल्कि जमात कसीर भी होती है। क्या खूबियाँ थी? फमा वहनो, वहन नहीं किया। अब आप समझ गए वहन क्या होता है? सब वो अरबी की तारीफ़ पढ़ेंगे जो भी हमने दोहराई है। वहन क्या अल्लाह के नबी ने बताया था? नहीं याद हुई? मैं बोलती हूँ, आप लोग मेरे साथ दोहराएंगे। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। हुब्बुद दुनिया, दुनिया की मोहब्बत, व कराहियतुल मौत, और मौत को मकरूह समझना। ये खूबी नहीं थी उनकी। साथ ही अपनी भी लिस्ट बना लें, आसानी होगी दोबारा दोहराने की बजाय। कि अल्लाह के नबियों के साथ जो गिरोह तैयार हुआ था वो दुनिया की मोहब्बत से चूर नहीं थे, अल्लाह की मोहब्बत में चूर थे। और वो मौत को कराहत से नहीं देखते थे, वो मौत की तमन्नाएं करते थे, ख्वाहिशात रखते थे। क्यों? कि जिसने जो तैयारी की होती है ना, वो उस काम के लिए फिर इंतज़ार भी करता है। आप जब खाना वगैरह पका लेते हैं ना, तो फिर मेहमानों के आने का सुन के आपको खौफ नहीं आता, आप इंतज़ार में होते हैं। इसी तरह जो बंदा अपनी ज़िंदगी का एक एक मिनट ज़ाया नहीं होता करता, अपने सारी नेमतों को इस्तेमाल कर रहा है वक्त पे, तो वो फिर मौत का इंतज़ार कर रहा होता है कि जल्दी से वो फरिश्ता आए और मुझे इन कोशिशों के बदले में जन्नत मिले। किस चीज़ पे सुस्ती ना की उन्होंने, किस चीज़ के बावजूद वो जमे रहे? लिमा साबहुम फी सबीलिल्लाह। ये दूसरी बात भी कर सकते हैं आप इसके साथ ही, कि अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के दीन के काम में जब कोई उनको मुश्किल पहुंचती थी तो हिम्मत नहीं हारते थे। हमारी हिम्मतें टूट तो नहीं जाती? कहीं हमारी हिम्मत इस पे तो नहीं टूट जाती कि टेस्ट बहुत हो गए, असाइनमेंट बहुत लंबा हो गया? हाँ, आप देखिए, ये मैं आपको नहीं कह रही, ये मैं समय खुद को सुनाती हूँ कि मेरा भी तो शौक ठंडा नहीं हो गया कि बस अब पढ़ लिए 3 पारे अब चलते हैं। जो बंदा डिटर्मिन होता है ना, वही काम कर सकता है। अल्लाह का रास्ता मुश्किलों का रास्ता है, इस पे जमने वालों को अल्लाह ताला खुशखबरियाँ देता है। वमा दाउफू, और सुस्त ना हुए। ये एक चेन है, आप यहाँ पे अपने नोट्स में एक ऐसी चेन बना सकते हैं। सबसे पहले वहन पैदा होता है, और वहन की सबसे खूबसूरत तारीफ वही है जो अल्लाह के नबी ने बता दी, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। सबसे पहले दिल में दुनिया की मोहब्बत आती है, उसका अगला स्टेप क्या होता है कि मौत से नफरत हो जाती है, क्योंकि तैयारी जो नहीं हुई भी। तीसरा दर्जा क्या होता है? दोफ पैदा होता है, कमज़ोरी, वीकनेस। ये वो कैफियत होती है जिसमें बंदा कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाता है। फिर इसके अंदर इंसान अपने दीन को बदलना चाहता है। ख्वाहिशात का जो नशा होता है ना, वो बंदे को अल्लाह ताला के दीन में तब्दीलियाँ करवाने का ज़रिया बन जाता है। नहीं नहीं, पॉसिबल नहीं, इस पॉसिबल, इस बहुत हार, मैं बहुत ऐसी, वो ज़ोफ़ पैदा होता है। और ये ज़ोफ़ अमल का ज़ोफ़ होता है, अल्लाह के दीन को कबूल ना करने का खौफ। बड़ी मुश्किल शरीयत है, नहीं आज के दौर में पॉसिबल नहीं, इस इम्पॉसिबल दिस, ये सारी जो बातें ये ज़ोफ़ में आती हैं। और जिस बंदे में ज़ोफ़ पैदा हो जाता है ना, फिर उसका अगला दर्जा होता है इस्तकानत का। वमस्तकानू, वमस्तकानू का लफ्ज़ थोड़ा सा आपके लिए नया लग रहा है, लेकिन इसका रूट आप देखेंगे तो ये लफ्ज़ आप बहुत जगह कर चुके। काफ वाव नून, उर्दू में एक लफ्ज़ सुना है, कौनो मकान, हाँ ये वही लफ्ज़ है। कुन फया कुन का लफ्ज़, कायनात का लफ्ज़ जो उर्दू में हम बोलते हैं, ये सब लफ्ज़ इसी में। इस्तकानत कहते हैं दुश्मन के मुकाबले में ढीला पड़ जाना, अपनी सारी चीज़ें उनके हाथों में दे देना कि तुम हमारे मुकद्दर के फैसले करो। दब जाना, किसी के लिए अपने मामलात को छोड़ देना, ये आखिरी दर्जा होता है। कौमों की तबाही जब होती है ना, अल्लाह जब किसी कौम को पटख के मारती है ना, चाहे किसी दूसरे दुश्मन के हाथों या पहले दौर में किसी भी मुसीबत और दुख के या किसी भी अजाब की वजह से, तो उसकी वजह सिर्फ वहन नहीं होता, उसकी वजह सिर्फ दोफ नहीं होता, बल्कि उसकी वजह इस्तकानत होती है। बंदा किसी डर का रहता ही नहीं है। ये जो लफ्ज़ है इस्तकानू, किसी का हो जाना या बन जाने की ख्वाहिश करना। पास ने इसको दूसरे रूट से भी लिया है। पहला रूट क्या बताया? काफ वाव नून, कौन वाला। एक दूसरा भी इसका मानी देखेंगे, ये रुबाई है। रुबाई क्या होता है? शाबाश, सीन काफ वाव नून, सुकून, ठहराव, ठहर जाना, ये वो कैफियत होती है कि जिसमें बंदा बिल्कुल डेड हो जाता है ना, जिसको आप ये समझ लें कि अपने दीन के मामले में गिविंग अप करने वाला बन जाता है, दुश्मनों की चीज़ों को कबूल करता है, उनके इशारों पे चलता है, फिर उसको अपना दीन अच्छा नहीं लगता। ऐसे लोग अपने दीन के मामले में ज़ोफ़ का शिकार हो जाते हैं, अमल कमज़ोर हैं, ढीले ढाले मुसलमान हैं, तलवार तो क्या पकड़नी थी, उनके हाथ में कलम भी नहीं आ रहा। ऐसे लोग अपने दीन को लोगों के सामने में इस तरह का बना के पेश करते हैं कि जिससे लगे कि वाकई ये बड़े दुखी हैं और इनके ऊपर बड़ी मुश्किलात आ गई। नतीजा हुआ कि दुश्मन ने रोब डाला, ये दब गए, अब ये उनके हाथों में यरगमाल हो गए। तो वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, ये बंदे नबियों के साथ काम करने वाले इन सारी बीमारियों से पाक थे, ना वो कमज़ोर हुए और ना वो दबे, बल्कि वो जमे। आज हमारा क्या हाल है इज्तमाही तौर पे? हाथ कांपते हैं हमारे, हम ऐसे डरते हैं अगर एक मुल्क का सदर दूसरे मुल्क से हो जाए तो हम कहते हैं पता नहीं अब हमारे ही खिलाफ़ की पॉलिसीज़ बन जाएंगी। जितनी बात करना चाहें कर लें इस मौजू पे, मेरे से ज़्यादा आपको पता होगा, लेकिन किसी भी गिरोह की नाकामी का ये बहुत बड़ा ज़रिया होता है कि वो ऐसा बन जाए कि अल्लाह के कानूनों को तो वो मुश्किल समझे और गैरों की बातों को आसान समझे। और सहाबा कराम भी ऐसे नहीं थे, बाकी भी नहीं थे। और असल में आप देखिए कि यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की तारीफ़ ही हो रही है। और चौथी खूबी इनकी क्या थी कि इनकी लबों पे एक दुआ रहती थी, और वो क्या कि वमा काना कौलहुम। देखिए लफ्ज़ यहाँ कौल है, दुआ नहीं है, आगे हालांकि दुआ आ रही है, यहाँ होना क्या चाहिए था वमा काना दुआ अहम, लेकिन क्या आया वमा काना कौलहुम। क्यों? दुआ तो बंदा ज़रा बड़े शऊर से मांगता है ना, और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ हाथ ऊंचे करो, वज़ू करो, किबला रुख हो जाओ, पूरा अच्छी तरह दुपट्टा लो, बाल बिल्कुल ना दिखें, फिर तुम कुछ आगे पीछे लगाओ, इतनी दफ़ा ये पढ़ो, फिर दुआ मांगो। हमारे यहाँ ये तसव्वुर है, यकीन करें, आप मेरे से ज़्यादा शायद जानते होंगे। हालांकि इतना प्रोटोकॉल ना भी हो तो दुआ दुआ ही है, लेकिन कौल क्या है? हर लम्हे एक वो दुआ है जो आप शऊर से मांग रहे हैं, और एक वो बात है जो आप उठते बैठते कर रहे हैं। आप सारा दिन जो बातें करते हैं ना, वो आपके मेरे कॉल हैं, बातें, और दुआ वो है जो शऊर से की जाए। इस लफ्ज़ कॉल ने बता दिया कि वो किसी ख़ास वक्त, ख़ास माहौल में, ख़ास महीने में, ख़ास जगह पे बैठ के दुआएं नहीं मांगते, बल्कि चलते फिरते दुआएं करते हैं। ये दुआएं उनके दिल का हिस्सा होती हैं। जो चीज़ दिल को लगती है ना, वो उठते बैठते निकलती है, हूक उठती है जब बंदा दुखी होता है ना, हाय फिर क्या हुआ, और खुशी होना तो चलते फिरते मुस्कुराहट होती है। यानी इन लोगों की ये दुआ इनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई कि रब्बना अग़फिर लना ज़ुनूबना, अल्लाह माफ़ कर दे गुनाह। देखिए ऊपर इतने बड़ी बड़ी नेकियों का तस्करा और यहाँ गुनाहों की माफ़ी की बात है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि किसी को अपने नेक अमल पर नाज़ नहीं करना चाहिए, हर हाल में अल्लाह से मग़फ़रत और अमल पर कायम रहने की दुआ करते रहना चाहिए। ये कब होगा? जब दिल में आजज़ी होगी, अल्लाह जो मैंने करना था ना वो कर नहीं सकी, और अल्लाह जो मैंने किया है ना वो इस काबिल नहीं है कि तुझे पेश करूं। कुछ लोग हैं ना, वो खाना पकाते हैं और टेबल पे जितनी देर मेहमान बैठा रहे ना, अपनी तारीफ़ों के गुनगाते हैं, मैंने ऐसे बनाया, ये किया, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो करती हूँ। और कुछ होते हैं ना, वो अपनी पूरी कोशिश से पका बना भी लेते हैं और साथ ही कहते हैं आज अच्छा नहीं बना, खुशी पूरी नहीं हुई, जो आपके काबिल नहीं है। ये फ़र्क है ना दोनों में। सच्चा मोमिन जिसका दिल रब्बानी बन चुका होता है ना, वो अपनी किसी नेकी को बड़ा नहीं समझता, बड़ी से बड़ी कुर्बानी को करके कहता है कि इतनी बड़ी ज़ात के लिए तो ये बहुत छोटी है, अभी हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। वो शेर है ना कि जहाँ दी दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। अल्लाह के नबी ने फरमाया फवल्लाहि लौलल्लाहु महतदैना वला तसद्दक़ना वला सल्लैना, अगर अल्लाह का फ़सल व करम ना होता तो ना हमें सीधे रास्ते की हिदायत मिलती और ना हम ज़कात और नमाज अदा कर सकते। ज़रूरत है इस बात की जो अमल कर ले वो अच्छा कर ले, क्योंकि अल्लाह की शान के मुताबिक वो अमल होगा, कभी कबूल होगा। कोशिश करे फिर भी इस्तग़फ़ार करे, और जो बंदा अपने नेक अमल पे मुतमईन हो जाता है ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके उस अमल के अंदर कमी आनी शुरू होती है। अल्लाह ताला में चाहता है कि हम अपने पिछले कामों पे شرمندگی کا اظہار کریں اور آئندہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، کل دشمن کے مقابلے میں ہم ہل گئے تھے، تو ہمارے اس گناہ کو معاف کر دے، اور آئندہ ہماری زندگی میں اگر کوئی جنگ کوئی جہاد آ جائے تو تو ہمیں اس میں استقامت دے دے۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا لِلْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، ایک ایک لفظ جو ہے ان کے دلی جذبات کا اظہار کر رہی ہے۔ جب دل سے دعائیں نکلتی ہیں، میدان جنگ میں لڑ بھی چکے اور دعائیں بھی مانگی، تو فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، اللہ نے پھر دنیا کا بھی ثواب دیا، وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا بھی ثواب دے دیا، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کیونکہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ تو ہمارے لیے میدان کھلا ہے، جو ربی بننا چاہتا ہے، جو ربی بننا چاہتا ہے، اس کو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، اپنی غلطیوں سے سیکھنا پڑے گا، اس کو اپنے اوپر غور و فکر کرنا پڑے گا۔ اگلی چند آیتیں بھی اسی کے بارے میں یہاں تک تلاوت سنیں گے۔
وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين.